আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যান ওয়া আদাম বাইনাল মা'ই ওয়াত তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বাদ ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মসজিদিল হারাম ইলাল মসজিদিল আকসা الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی مناسبت سے چند آیات بینات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. قبل اس کے کہ ان آیات بینات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے, چند اشعار آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. ان کی نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا, ان کی نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا, فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا, فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا. یاد ہے مجھ کو طور پر تیری بلندرانیاں, یاد ہے مجھ کو طور پر تیری بلندرانیاں, مجھ سے کہا نہیں نہیں, مجھ سے کہا نہیں نہیں, یار کو سب دکھا دیا, مجھ سے کہا نہیں نہیں, یار کو سب دکھا دیا. دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے, دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے, دستِ عطا کے سامنے, دستِ عطا کے سامنے دستِ طلب بڑھا دیا, دستِ عطا کے سامنے دستِ طلب بڑھا دیا. کیوں نہ دلِ ریاض میں آئی نظر تجلیاں, کیوں نہ دلِ ریاض میں آئی نظر تجلیاں, غارِ حرا کے چاند نے, غارِ حرا کے چاند نے رخ سے نقاب ہٹا دیا, غارِ حرا کے چاند نے رخ سے نقاب ہٹا دیا، ان کی نگاہِ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، ارشاد ربانی ہوا، سبحان الذی، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات، اسرا بعبدہ لیلا، یعنی جس نے سیر کرائی رات کے قلیل حصے میں اپنے بندہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب یہاں پر مسجد اقصی کی شان بیان ہو رہی، کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حوله، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی، اپنے اس بندہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، لنریہ من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر، اور بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے۔ واقعہ معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات اپنے محبوب محترم تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، سرور انبیاء، حبیب کبریا، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم مقام عطا فرمایا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے قرب خاص میں پہنچ گئے، اس مقام پر جہاں نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، اور نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا، اس مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک عظیم مقام، مرتبہ، فضیلت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اب اس واقعے معراج پر مخالفین بہت سے اعتراضات کرتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ دن میں معراج کیوں نہیں ہوئی، رات میں کیوں ہوئی، کوئی یہ کہتا ہے کہ کیسے چلے گئے، آسمانوں سے کیسے گزر گئے، سدرت المنتہا سے کیسے گزر گئے، اور دیگر چیزوں سے کیسے گزر گئے، مختلف قسم کے اعتراضات۔ کسی نے کہا کہ روحانی معراج ہوئی، جسمانی معراج نہیں ہوئی، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف روح مبارک کے ساتھ گئے، جسم اقدس زمین پر رہا۔ اس قسم کے اعتراضات یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب و شہادہ ہے، جو ہو چکا ہے وہ جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، اور جو آئندہ ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج پر اعتراضات کریں گے، اسی لیے جب اس نے کلام مقدس میں اس عظیم و شان سفر کا ذکر فرمایا تو ایسے ایسے الفاظ اس میں ذکر کیے کہ ہر لفظ کسی نہ کسی اعتراض کا جواب دے رہا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کی شان، اس کی قدرت، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک عظیم المرتبت شان اس میں سے ظاہر ہو رہی ہے، اس کا جامع کلام ہونا ظاہر ہو رہا۔ اگر یہ مخالفین ان آیات بینات کو صحیح طور پر پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو तो जितने इतराजात किए उन सब के जवाबात इसमें हो जाए। अब आइए जरा सा गौर करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक्य को शुरू किया लफ्ज़ सुबहान, सुबहानल्लज़ी, पाक है वो। किस चीज से पाक? हर किस्म की आजजी इनकसारी से पाक, हर किस्म के ज़ौफ़ से पाक, हर किस्म की कमजोरी से पाक। यानी उसकी ज़ात में किसी किस्म का ज़ौफ़ नहीं, किसी किस्म का नक्स नहीं, किसी किस्म की कमजोरी नहीं, हर चीज से पाक। तो जब वो कमजोरी से पाक है तो इसका मतलब है वो ताकत का सर चश्मा है, और जब वो ताकत का सर चश्मा है सब कुछ कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह तबारक व तआला अपने हर चाहे पर कादिर है। तो जब वो हर चाहे पर कादिर है तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा, फिर वहां से मका, नामका, काबा कौसैन और इन तमाम चीजों का मुशाहिदा यानी जन्नत और जहन्नम और दीगर चीजों का मुशाहिदा करके एक रात में वापस लाने पर भी कादिर है। अब देखें ना, सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात। अल्लाह तबारक व ताला ने शुरू ही किया इसी मुबारक लफ्ज़ से, सुबहानल्लज़ी, पाक है वो। तो पहले लफ्ज़ ने ही जवाब दे दिया कि वो ज़ात जो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जा रही है वो ऐसी ज़ात है जिसमें कोई कमजोरी नहीं है, जिसमें कोई नक्स नहीं है, जिसमें किसी किस्म की आजजी इनकसारी नहीं है, वो हर चीज पर कादिर है। तो अपने महबूब को एक रात में वहां ले जाकर और एक रात में वापस लाने पर भी कादिर, तो एतराज का सवाल ही नहीं। अच्छा, अब आगे देखिए, सिर्फ सुबहान नहीं फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बेअब्दिही लफ्ज इस्तेमाल किया। असरा, उलमाए कराम ने लिखा असरा के माना किसी शख्स को बेदारी में रात के वक्त ले जाना, किसी शख्स को बेदारी में रात के वक्त ले जाना। असरा का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि पता चल जाए कि मेराज रात में हुई। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया जो ले गया, इसमें यह नहीं कि मेरा महबूब खुद गया। अब जो जाने पर इतराज कर रहे हैं ना, अब देखें दो चीजें हैं, जाना और है, ले जाना और है। एक आदमी कहे कि मैं खुद गया तो आप उसको देखेंगे ये जा सकता है नहीं। अब मिसाल के तौर पर ये समझें कि एक बच्चा ये कहे कि मैं सदर गया, एक 4 साल का बच्चा, 5 साल का, 6 साल का, आप कहेंगे ये नहीं जा सकता, ये कैसे जा सकता है, किसी दूर इलाके का नाम ले ले। लेकिन उसका बाप ये कहे कि मैं ले गया, अब कोई इतराज नहीं, इसलिए कि अब हम जाने वाले को नहीं देख रहे हैं, अब हम ले जाने वाले को देख रहे हैं। जाने वाला कैसा ही हो लेकिन ले जाने वाले पर नजर है, और जो ले जाने वाला है वो कुदरत रखता है, वो ले जा सकता है। मसलन अगर वो बच्चे का बाप है तो हमने देख लिया कि हाँ ये ले जा सकता है, और ये सदर क्या ये तो किसी मुल्क भी ले जा सकता है। वो कहते कि मैं इसको यूरोप ले गया, मैं इसको अमेरिका ले गया, मैं इसको सऊदी अरब ले गया, फला मकाम पर ले गया, कोई इतराज होगा? कभी नहीं होगा। बिला तजबी हो तमसील, खालिक़े कायनात जानता था कि अगर हम इसमें जिक्र करें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ये फरमाए कि मैं खुद गया, अगर सरकार ये फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान था, हम इसको मान लेते कि हुजूर अलैहिस्सलाम जा सकते हैं, लेकिन फिर भी खालिक़े कायनात ने यह नहीं फरमाया मेरा महबूब गया। सुबहानल्लज़ी असरा बेअब्दिही, पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को रातों रात। अब यहां जाने का जिक्र नहीं, ले जाने का जिक्र है। व अल्फाज दीगर यूं कहा जा सकता है कि जब ले जाने वाले हम हैं तो एतराज करने वाले तुम कौन हो। अब यहीं से आप समझ लें कि जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के जाने पर एतराज कर रहा है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के जाने पर नहीं, वो खुदा के ले जाने पर एतराज कर रहा, इसीलिए कि खालिक कायनात फरमाता है जो ले गया अपने बंदे को रातों रात। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हुआ, असरा के माना किसी शख्स को बेदारी में रात के वक्त ले जाना, तो असरा का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, लेकिन आगे फरमाया बेअब्दिही लैला, अपने बंदे खास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में। तो जब असरा के माना रात में ले जाने का है, तो फिर लैला का लफ्ज लैल के माने भी रात, यानी इसका माना भी यही हुआ कि रात में ले जाना और फिर लैल का लफ्ज इस्तेमाल क्यों, हिकमत क्या है? मुफस्सरीन किराम ने लिखा, उलमाए किराम ने, कि लैल का लफ्ज इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा जिक्र किया, अगरचे असरा के माना यही है कि किसी शख्स को रात के वक्त ले जाना, लेकिन फिर आगे बेअब्देही लैला इसलिए इस्तेमाल किया, पता चल जाए कि मेराज पूरी रात नहीं हुई बल्कि रात के कलील हिस्से में हुई, कलील हिस्से में। अच्छा, कितना वक्त लगा, कितनी देर ठहरे, ये इंसान की अकल से मावरा है, समझ ही नहीं सकते। महबूब अपने मुहिब के पास, तालिब अपने मतलूब के पास, नबी अपने रब के कुर्ब खास में कितनी देर रहा? अगर आप वैसे लगाएं तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक उस जमाने में 2 महीने की मुसाफत या इससे भी ज्यादा, लेकिन एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आना, इमामत अंबिया की, फिर 7 आसमानों से गुजरना, हर आसमान पर एक नबी से मुलाकात, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर अल्लाह तबारक व ताला के अस्माए सिफात की तजल्लियात से गुजरना, फिर मका लामका काबा कौसैन नमाजों का तोहफा, जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा, और ये सब चीज़ें सरकार द्वारा अलैहिस्सलाम मुशाहिदा फरमा के वापस तशरीफ लाए हैं, तो दरवाजे की कुंडी हिल रही है, बिस्तर मुबारक उसी तरह गर्म। ये अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा ही नहीं कि किसी को पता चले मेरा महबूब मेरे पास कितनी देर रहा। इंसान की अकल यहां पर दंग रह जाती, इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने फरमाया, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, यहां तो पड़े हैं खुद जेहद को लाले, किधर से आए वो किधर गए थे। यानी अकल, गुमान, फहम, ये सब चीजें यहां पर फेल हो जाती हैं, पता ही नहीं चला किस तरफ से आया और किस तरफ गए। ये समतें, ये जेहतें, ये सब चीजें, फरमा खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, यहां तो पड़े हैं खुद जेहत को लाले, किधर से आए वो किधर गए थे। अच्छा, अब आप देखिए, सुभान अल्लज़ी असरा बेअब्देही लैला, पाक है वो जो ले गया अपने बंदे खास यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। अच्छा, हमने इब्तिदा में यह बताया था कि एक एतराज यह भी है कि रूहानी मेराज हुई है, जिस्मानी नहीं हुई। बहुत से लोग हैं ना जो जिस्मानी मेराज के कायल हैं, कहते नहीं जिस्म मुबारक यहीं रहा, रूह मुबारक गई। किसी ने कहा नहीं, ख्वाब में देख लिया। ख्वाब में तो आदमी बहुत कुछ देख लेता, कोई देखता है मैं आसमानों पे घूम रहा हूं, कोई देखता है कि मैं उड़ रहा हूं, लेकिन जब आंख खुलती है तो वहीं होता। तो कहते नहीं, ख्वाब में देख लिया कि मैं सब जगह का मुशाहिदा करके आया, और जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो माज़ अल्लाह आपने देखा कि आप वहीं पर हैं, यानी मेराज नहीं हुई। ऐसा नहीं, अल्लाह तबारक व ताला ने लफ्ज इस्तेमाल किया बेअब्देही, जो ले गया अपने बंदे खास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मुफस्सरीन ने लिखा, अब्द का लफ्ज कुरान करीम में जहां भी इस्तेमाल हुआ है तो किसी की जिंदगी में अब्द का लफ्ज इस्तेमाल होना, जिस्म और रूह दोनों इससे मुराद है। सिर्फ रूह मुराद नहीं है, कुरान करीम में दीकर मकामात पर भी अल्लाह तबारक व ताला ने अब्द का लफ्ज इस्तेमाल किया। अरअयतल्लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला, यहां पर भी अब्द का लफ्ज इस्तेमाल किया, और मुफस्सिरीन ने लिखा यहां अब्द से मुराद जिस्म और रूह दोनों है, सिर्फ जिस्म मुराद नहीं, सिर्फ रूह मुराद नहीं। तो अब्द का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि जो लोग जिस्मानी मेराज के मुनकिर हैं उनका जवाब हो जाए। बेअब्द ही, और अब से जिस्म और रूह दोनों मुराद हैं, खालिक कायनात ये बताना चाहता है मेरा महबूब मेरे पास आया तो सिर्फ रूह मुबारक नहीं, जिस्म अकदस के साथ आया, रूह मुबारक के साथ आया। रूहानी मेराज नहीं हुई, जिस्मानी मेराज हुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस्म अकदस के साथ तशरीफ ले गए। तो ये इतराज का जवाब भी इसमें आ गया। जिस्मानी मेराज बेअब्द ही, इसकी दलील कैसे गए? असरा जो ले गया अपने बंदे को। अच्छा, यहीं पर एक वाकया काबिले जिक्र है। एक बुजुर्ग हजरत सैयद हसन रसूल नुमा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मदार मुबारक दिल्ली में, इंडिया में मौजूद है, गालिबन दिल्ली में है, अपने वक्त के जलील कदर बुजुर्ग गुजरे, कपड़े गर्द आलूद, बालों पर, दाढ़ी पर गर्दो गुबार, एक अजीब कैफियत में एक छोटी सी लकड़ी ऐसे हिलाते हुए गुजर रहे। देखा कि एक मुहद्दिस साहब बैठे हैं, किताबें खुली हुई हैं, अहादीस का जखीरा है, आगे तलामिदा हैं, दरसो तदरीस हो रही, अहादीस मुबारक पढ़ाई जा रही। शागिर्द ने सवाल किया, नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम मेराज में कैसे गए, आसमानों से कैसे गुजर गए, सिदरतुल मुंतहा से गुजर गए, मका ला मका से गुजर गए? उस्ताद ने जवाब दिया। शागिर्द ने एक दलील दी, उस्ताद ने तोड़ दी, उस्ताद ने दलील दी, शागिर्द ने तोड़ दी। आपस में बहस मुबाहिसा हो रहा, ये खड़े हैं, ये करीब आए और इन्होंने कहा, मैं बताऊं कैसे गुजर गए? उन्होंने एक नजर देखा और उसके बाद पढ़ाने में मसरूफ हो गए। दिल में सोचा होगा कि ये फकीर, ये मजजूब आदमी, ये क्या जाने कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो अहादीस का जखीरा खोले बैठे। फिर बहस मुबाहिसा शुरू हो गई, कैसे गुजर गए, मका ला मका से कैसे गुजर गए, आसमानों से कैसे गुजर गए? ये फिर आगे बढ़े, कहा मैं बताऊं कैसे गुजर गए? उन्होंने फिर एक नजर देखा, फिर पढ़ाई में मसरूफ हो गए, जवाब नहीं दिया। गरज ये कि बहस चलती रही। जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो फिर ये आगे बढ़े और तीसरी मर्तबा कहा, मैं बताऊं कैसे गुजर गए? तुम जो बहस कर रहे हो, आसमानों से गुजर गए, सिदरतुल मुंतहा से गुजर गए, मैं बताऊं कैसे गुजर गए? उस्ताद ने किताब बंद की, अच्छा ठीक है बताओ, क्या तुम हमसे कह रहे हो? हम अहदीस का जखीरा खोले बैठे, हम मुहद्दिस हैं, ये तलामिदा हैं, हम उस्ताद हैं, ये बहस हो रही है, इल्मी गुफ्तगु है, तुम क्या बताना चाहते हो, बताओ हमें। कहा मुझे देखो, मुझे देखो, मैं बताऊं सरकार कैसे गुजर गए? वो देखने लगे, इनके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी, एक दीवार थी, ये उस तरफ गए, लकड़ी घुमाते हुए आए और दीवार के अंदर से इस तरफ निकल गए। हालांकि दीवार में कोई सुराख नहीं है, पूरी दीवार है, लकड़ी हिलाते हुए आए, चले और दीवार के अंदर से गुजर के इधर निकल गए। गौर से देख रहे हैं, फिर इधर से आए, लकड़ी हिलाते हुए उधर से आए, दीवार के अंदर से निकल गए। कहा ऐसे गुजर गए जैसे मैं गुजर गए? हैरान होकर देख रहे, तुम खामखा बहस कर रहे हो, कैसे गुजर गए आसमानों से? ऐसे गुजर गए जैसे मैं गुजर गया। जब ये जिसमें कसीब गुजर सकता है तो वो जिसमें लतीफ, जो नूर ही नूर है, वो कैसे नहीं गुजर सकता? वो कैसे नहीं गुजर सकता? मैं तो गुलाम हूं, वो तो आका है। जब गुलाम का ये हाल है तो फिर आका की नूरानियत और उनकी कैफियत क्या हो? जब मुशाहिदा हो गया, सबकी जबानें बंद हो गईं, अब किसी ने सवाल नहीं किया कैसे गुजर गए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है और नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम को एक अजीम मकाम और मर्तबा अता फरमाना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीज़ों से गुजार कर अपने क़ुर्ब ख़ास में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लिया। तो ये इतराजात कैसे गुजर गए, जिस्मानी मेराज, रूहानी मेराज, जिन आयात बयनात में इस वाक़े का जिक्र है, अगर मुखालिफीन मोतरजीन इन आयात बयनात को ज़रा सी समझ कर अक़ल के साथ पढ़ लें, अल्लाह तबारक व ताला ने सारे इतराजात के जवाबात इसी में दिए। सुबहानल्लज़ी, पाक है वो, असरा बेअब्दिही लैला, जिसने सैर कराई या जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। फिर मस्जिद अक्सा की शान बयान की, अल्लज़ी बारकना हौलहु, हमने उसके इर्द गिर्द बरकते नाजिल फरमाई, लेनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उस बंदे खास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अजीम निशानियां दिखाएं, इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अब उलमा इकराम ने लिखा कि ये हुवस समीउल बसीर, कि बेशक वो सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। تو اس کی نسبت خالق کائنات کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور اس کی نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی ہو سکتی ہے. اب واقع معراج جو ہوا کیوں ہوا, اس کی حکمتیں کیا تھیں؟ غزالیہ دورہ علامہ سید احمد سعید کاظمی نور اللہ مرقدہ مقالات کاظمی میں بڑے پیارے انداز میں اس کی حکمت بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تین شانیں ہیں, تین: بشریت, ملکیت اور نورانیت, اور محمدیت. بشریت جس کا تعلق عالم جسمانیات سے, عالم جسمانیت سے اس کا تعلق. ملکیت اور نورانیت جسے عالم انوار و حقائق اور مجردات قدسیہ سے تعلق. محمدیت یعنی حق تعالی کی ذات و صفات اور حسن و جمال کا مظہر اتم ہونا جسے بارگاہ قدس اور حضرت جمال الوہیت سے گہرا تعلق ہو. اب یہ تین شانیں, اب دیکھیے تینوں شانوں کا عروج ان عالموں میں ممکن تھا جن سے ان کا تعلق ہے, بشریت, ملکیت اور محمدیت. یہ تین شانیں نا, ان تینوں کا عروج اسی وقت ممکن تھا کہ ان عالموں سے ان کا تعلق ہو. جن عالموں سے تعلق ہے انہی میں ان کا عروج ممکن ہے. جب مسجد حرام سے مسجد اقصا تشریف لے گئے تو عالم بشریت میں انسانیت اور بشریت کا کمال رکھنے والے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام پیچھے ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے. یہاں یہ بشریت کی معراج ہوئی. جب آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور ساتوں آسمانوں سے گزر کر سدرت المنتہا پر پہنچے تو یہ وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے فرشتے بھی آگے نہیں جا سکتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے بھی آگے بڑھ گئے. یہ ملکیت کی معراج. اب کیا ہے محمدیت؟ اسی طرح زمان و مکان کے قیود سے بالا ہو کر فوق العرش پہنچ کر بارگاہ قدس میں حاضر ہونا, یہ محمدیت کی معراج. تین شانیں تھیں اور ان تین شانوں کا جن جن عالموں سے تعلق تھا انہی عالم کے ساتھ ہی ان کا عروج ممکن تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں شانوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عروج عطا فرمایا اور وہی معراج. یہ حکمت ہے اس معراج. اب آئیے دیکھیں حدیث معراج. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ واقعہ ہے نا, یہ کسی ایک صحابی نے بیان نہیں کیا ہے, یعنی اس کا راوی کوئی ایک نہیں ہے. جلیل القدر صحابہ, کثیر صحابہ اس کو روایت کرتے ہیں, جن کے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے واقعات بیان فرمائے. حضرت انس بن مالک مالک بن سعسع سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے اس رات کی کیفیت بیان فرمائی جس میں آپ کو معراج ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں حطیم کعبہ میں تھا, یکایک میرے پاس ایک آنے والا آیا, اس نے میرا سینہ یہاں سے یہاں تک چاک کیا. راوی کہتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک کے کیا معنی؟ تو جواب دیا گیا حلقوم سے ناف تک سینہ چاک کیا, قلب مبارک کو نکالا, آب زمزم سے دھویا, سونے کے تشت میں رکھا. اچھا جب قلب مبارک کو نکالا تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں, یعنی جو حدیث میں جو لفظ ہے نا آنے والا آیا, وہ حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا قلب سدید فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان. یہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک, ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک, بے عیب, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک ایک تو پاک تھا، دوسری کہتے اس میں دو آنکھیں تھیں جو دیکھتی تھیں، دو کان تھے جو سنتے تھے، قلب مبارک میں. اس کو فتح الباری میں ذکر کیا گیا. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا، انی ارا مالا ترونا و اسما مالا تسماؤن، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے. اچھا، قلب مبارک کو نکالا، اور ایک روایت میں آیا کہ سونے کے تشت میں رکھا، آب زمزم سے دھویا، پھر دوبارہ سینے اقدس میں رکھا، سینہ دوبارہ سی دیا گیا. انسان کی زندگی کا دار و مدار اس کے دل پر ہے. دل جب تک دھڑکتا ہے، سرکولیشن آف بلڈ ہوتا ہے، ہاتھ بھی کام کرتے ہیں، دماغ بھی کام کرتا ہے، زبان بھی چلتی ہے، آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، کان بھی سنتے ہیں. اسی لیے جب کسی کا آپریشن ہوتا ہے تو آکسیجن لگائی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے، پھر اس کا سینہ چیر کر دل نکالا جاتا ہے. اگر کسی جیتے جاتے آدمی کا دل نکال لیا جائے، اسی وقت اس کی موت واقع ہو جائے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کیا گیا، سرکار دیکھ رہے ہیں، قلب مبارک نکالا گیا، حضور دیکھ رہے ہیں، آب زمزم سے دھویا گیا، حضور دیکھ رہے ہیں، سونے کے تشت میں رکھا گیا، حضور دیکھ رہے ہیں، دوبارہ ایمان اور حکمت اور نہ جانے کیا کیا انوار و تجلیات اس میں بھر دیے گئے، اور پھر سینہ اقدس میں رکھ کر اس کو سی دیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں. یہ حیات النبی کی سب سے بڑی دلیل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا. اچھا، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا، سونے کے تشت میں رکھا، آب زمزم سے دھویا، دھونے کی ضرورت کیا تھی؟ دھویا تو اس چیز کو جاتا ہے جس میں کوئی خرابی ہو، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قلب مبارک میں کوئی خرابی تھی؟ نہیں. وہ تو کہتے ہیں قلب شدید، حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں بالکل پاک اور صاف، ہر قسم کی کجی سے، ہر قسم کے عیب سے بالکل پاک. ارے یہی دل پاک نہ ہو تو پھر اور کون سا دل پاک؟ اسی قلب نے تو سارے قلوب کو پاک کیا ہے، پوری انسانیت کے قلوب کو پاک کرنے والا تو یہی قلب، تو پھر دھونے کی کیا ضرورت؟ حکمت یہ تھی کہ آب زمزم کو نسبت تھی اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے قدموں سے، اب اس کو شرف دینے کے لیے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دھویا تاکہ آب زمزم کو نسبت ہو جائے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سوال ہوا کہ سونے کے تشت میں کیوں رکھا؟ اور بہت ساری دھاتیں ہیں، چاندی کے تشت میں رکھ دیا جاتا، اور لوہا ہے، اور بہت ساری، سونے کے تشت میں رکھا اس کو دھو کر کیوں؟ حکمت یہ تھی کہ سونا تمام دھاتوں میں سب سے افضل، اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قلوب میں سب سے افضل، تو افضل کے لیے افضل دھات استعمال کی گئی، اور سونے کو بھی شرف دینا تھا، فضیلت دینی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک، اور اس میں ایمان اور حکمت اور نہ جانے کتنے انوار و تجلیات اس میں رکھ کر سینہ اقدس میں رکھا گیا، اور سینہ مبارک کو سی دیا گیا. حلہ بہشتی پہنایا گیا، براق لایا گیا. حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کا دولہا بنایا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس براق پر رونق افروز ہوئے. اب شہنشاہ کون و مکان کی سواری جا رہی ہے. کس شان سے جا رہی ہے؟ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جا رہی ہیں. کہاں سے چلے؟ قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد حرام سے ڈائریکٹ آسمانوں پر کیوں نہیں لے گئے؟ یہ بھی تو ممکن تھا نا. کیا ضرورت تھی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا جاتا، پھر وہاں سے آسمانوں پر؟ جو خدا مسجد اقصی سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو आसमानों पर ले जा सकता है तो वो मस्जिद हराम से नहीं ले जा सकता। भाई सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को जैसे जिब्रील ने जगाया और कल्ब मुबारक को निकाला, धोया, ये तमाम चीजें हुई, जन्नत का धूला बनाया, हल्ला बहिश्ती बनाया, बुराक पर सवार किया, वहीं से सीधे सीधे आसमानों पर तशरीफ ले जाते। मस्जिद अक्सा ले जाने में हिकमत क्या थी? उलमा ने लिखा, मुफसरीन ने लिखा, हिकमत ये थी, ये तो मुमकिन था कि यहां से भी सीधे आसमानों पर तशरीफ ले जाते। कई हिकमतें थी, एक हिकमत तो ये थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बशरियत को उरूज देना था और बशरियत की मेराज वहीं पे होनी थी कि वो सारे बशर जो पूरी कायनात के तमाम बशरों में इंसानों में सबसे अफजल थे उन सबसे आगे खड़ा करना था अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकि सबकी बशरियत पीछे रह जाए और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत आगे हो और यहां पर हुजूर की बशरियत की मेराज हो जाए। और दूसरी हिकमत यह थी कि काफिरों ने मस्जिद अक्सा देखी थी और हुजूर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा नहीं देखी। वहां ले जाने में हिकमत यह थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अगर डायरेक्ट मस्जिद हराम से आसमानों पर तशरीफ ले जाते और आकर बताते कि मैं गया, मैंने जन्नत का मुशाहिदा किया, जहन्नम का मुशाहिदा किया, तमाम जजा और सजा और ये सारी चीजों को देखा, तो काफिरों को तो पता नहीं कि आसमान पे क्या हो रहा है। वो कह देते कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो नहीं पता कि आप आसमानों पर गए, हम तो जानते नहीं, लेकिन मस्जिद अक्सा हमने देखी है, तो लिहाजा मस्जिद अक्सा की निशानियां बताइए। और हुआ भी यही कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वापिस आकर ये वाकये मेराज का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि देखिए जी, आसमानों को तो हम नहीं जानते, आसमानों के ऊपर क्या है, जन्नत जहन्नुम और मका ला मका काबा कौसैन जो कुछ आप फरमा रहे हैं हम इसको नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि मस्जिद अक्सा हमने देखी है, आपने नहीं देखी। और आप फरमाते हैं यहां से मैं मस्जिद अक्सा गया, तो पहली बात तो ये है कि एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाना ही नामुमकिन। अगर आप कहते हैं कि गए हैं और वहां अंबिया की इमामत की है तो हमें मस्जिद अक्सा की निशानियां बताइए, उसकी मेहराब कैसी है, उसके दरवाजे कैसे हैं, उसकी खिड़कियां कैसी हैं, उसकी बनावट कैसी है। अगर आपने बता दिया तो फिर हम जान लेंगे कि हाँ वाकई ये हिकमत थी मस्जिद अक्सा ले जाने में। और हुआ यही कि जब काफिरों ने सवाल किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे थोड़ी सी कुछ परेशानी हुई। अब आप कहेंगे कि परेशानी क्यों हुई, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम तो होकर आए थे। देखिए बाद औकात ऐसा होता है कि किसी तरफ इंसान की तवज्जो नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में अरसे से नमाज पढ़ रहे, अगर कोई आपसे पूछ ले कि मस्जिद में कितने पंखे लगे हैं, कितने दरवाजे हैं, मेहराब कैसी है, उसके कितने कोने हैं, क्या है, ये सारी चीज, तो आप नहीं जवाब दे सकते, हालांकि बरसों से नमाज पढ़ रहे। और अगर कोई पूछे कि क्यों नहीं जवाब दे सकते, तो भाई मैं कोई मेहराब देखने जाता हूं, मैं तो नमाज पढ़ने गया था, पढ़कर आ गया, मैंने कोई बहुत गौर से गिना नहीं कि कितने पंखे। हाँ अगर आप सोच कर जाएं कि मुझे वाकई देखना है कितने पंखे हैं, कितनी लाइटें हैं, दरवाजे, खिड़कियां, ये सब मेहराब कैसी है, फिर तो हो सकता है ना। बिला तशबीह व तमसील मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए तो मेहराब को देखने नहीं गए थे, दरवाजों को देखने नहीं गए थे, उस इमारत की बनावट को देखने नहीं गए थे, अंबिया की इमामत के लिए गए थे। सरकार ने इमामत फरमाई और वहां से आसमानों पर तशरीफ ले गए। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब वो कुफार मेरे सामने आकर बैठे और सवाल करना शुरू किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पता है कि हमने मस्जिद अक्सा देखी है और आपने नहीं देखी, बताइए मेहराब कैसी है, दरवाजे कैसे हैं, बनावट कैसी है, इस किस्म के सवालात किए। सरकार फरमाते मेरे खुदा ने मस्जिद अक्सा को उठाकर मेरे सामने रख दिया, वो सवाल करते थे, मैं देखता था और उनको बता देता था। ये शान है नबी पाक अलैहिस्सलाम की। अब यहां पर भी तो एहतमाल है, मस्जिद अक्सा को उठाकर सामने रखा, तो अगर किसी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा जाए तो वो जगह तो खाली हो जाती। तारीख में कभी भी ऐसा नहीं मिलता कि मस्जिद अक्सा की जगह कभी खाली हुई हो, भाई जब उठाकर रखा गया होगा तो मस्जिद अक्सा की जगह खाली होगी ना, लेकिन किसी ने नहीं देखा, मस्जिद अक्सा वालों ने नहीं देखा, बैतुल मुकद्दस में रहने वालों ने नहीं देखा कि वो जगह खाली हुई। इसमें दो इहतमाल हैं, या तो मेरे खुदा ने उसकी मिसल हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने कर दी, या फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम और मस्जिद अक्सा के दरमियान जितने हिजाबात थे वो सब के सब हटा दिए, आका ने वहीं बैठे बैठे मस्जिद अक्सा को देखे। और ये मुमकिन है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान है। तब आपने देखा कि ये हिकमत थी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाने में। अब आइए आगे चलें। 70,000 फरिश्तों के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, जिब्रील अमी साथ हैं, 70,000 फरिश्ते साथ हैं, बुर्राक पर हुजूर अलैहिस्सलाम रौनक अफरोज हैं। बुर्राक वो सवारी है जिसका एक कदम यहां है तो दूसरा कदम उस मकाम पर है जहां इंसानी निगाह की हद है। अब आप देखें तेजी कितनी है। बर्क कहते हैं बिजली को, और बिजली की रफ्तार साइंसदान कहते हैं 186,000 मील फी सेकंड, यानी एक सेकंड में बिजली जो फासला तय करती है 186,000 मील। आप कितनी दूर एक बल्ब लगा दें और स्विच आपके पास हो, दरमियान में मीलों का फासला हो, इधर आप ऑन करेंगे उधर बल्ब रोशन, इधर ऑफ करें उधर बल्ब बंद, क्यों? साइंस कहती है कि तेजी के साथ बिजली सफर करती है, और बिजली को बर्क, और यह बर्क नहीं है, यह है बुर्राक, कई बिजलियों का मजमुआ। इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसकी रफ्तार क्या हो। एक कदम यहां तो दूसरा कदम वहां जहां इंसानी निगाह की हद है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा गुजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से हुआ तो मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। किसी को दफन किया जाता है तो उसको लिटाया जाता है, खड़ा तो नहीं होता, खड़ा करके किसी को दफन नहीं किया जा सकता, लिटाकर तो यकीनन उनको भी जब दफन किया गया होगा तो लिटाया गया होगा, लेकिन सरकार फरमाते हैं वो खड़े होकर मैंने देखा, वह हुआ युसल्ली कायमुन फी कब्रही, वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़। पता चला कि नबी कब्र में जिंदा है, और जिस तरह वो इबादत करता है विसाल के बाद अपनी कब्र में भी उसी तरह इबादत करता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मूसा कलीमुल्ला कब्र में नमाज पढ़ रही, तो गौर करो जब मूसा कलीमुल्ला जिंदा है तो हबीबुल्ला क्यों ना अपने रोजे मुबारक में जिंदा हो। बाद उलमा ने लिखा वो हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ रहे थे, उन्होंने भी देखा सवारी गुजर रही है, इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए और खड़े होकर दुरूद पढ़ने लगे। बाहर सूरत सरकार की सवारी आगे बढ़ गई। अब पहुंचे कहां? मस्जिद अक्सा। कुरान कहता है मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। सरकार का जो बुर्राक था उसको एक पत्थर के साथ बांध दिया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली मारी तो उस पत्थर में सुराख हो गया और उसको उससे बांध दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम पहुंचे, 124,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम या कमोबेश जितने भी थे सब के सब मस्जिद अक्सा में मौजूद। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया इकराम यहां पर मौजूद हैं, सरकार इमामत फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम मुसल्ले इमामत पर सबसे आखिर में आने वाले आज सबसे आगे खड़े। अल्लाह तबारक व ताला ने अंबिया इकराम का इमाम बनाकर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह वादे फरमा दिया कि अपने अपने दौर में तुम इमाम रहे होगे, क्योंकि नबी जो है ना अपने दौर में सबसे अफजल होता। अल्लाह ताला उसी को नबुव्वत से सरफराज फरमाता है जो तमाम इंसानों में सबसे अफजल हो। तो जितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम थे 124,000 हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, सबके सब अपने दौर में सबसे अफजल रहे, सबसे बरतर रहे, सबसे बाला रहे, सबके इमाम रहे। खालिक कायनात ने आज की रात अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब का इमाम बनाकर यह बता दिया कि ए गिरोह अंबिया, बिलाशुबा अपने अपने दौर में तुम सबसे अफजल रहे, सबसे बरतर रहे, सबसे बाला रहे, लेकिन आज सबसे अफजल है तो मेरा नबी है, सबसे आला है तो मेरा नबी है, सबका इमाम अगर है तो मेरा नबी। तुम अपने अपने दौर में इमामत करते रहे, लेकिन आज तुम्हारा इमाम भी है तो मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इमामत फरमाई। उसके बाद जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार जमीन वाले दीदार से मुशर्रफ हो गए, अब आसमान वाले भी बेचैन हैं। हुजूर आसमानों पर तशरीफ ले चले। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम बुर्राक पर सवार हुए। अब एक मंजिल तय हो गई, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, बशरियत की मेराज हो गई। अब हुजूर की मलकी सिफत का जहूर हुआ। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम आसमानों पर तशरीफ ले जा रहे। रिवायत में आता है कि पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा बंद। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया, आवाज आई, कौन? कहा, जिब्रील। तुम्हारे साथ कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या उन्हें बुलाया गया है? हाँ, उन्हें बुलाया गया। दरवाजा खुल गया, तशरीफ ले गए। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सरकार ने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, फरमाया, नेक फरजंद और नेक नबी पर मेरा भी सलाम। उसके बाद दूसरे आसमान पर तशरीफ ले गए। फिर वही कैफियत, दरवाजा बंद है, दस्तक दी गई, कौन? कहा, जिब्रील। तुम्हारे साथ कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या वो बुलाए गए हैं? हाँ, उन्हें बुलाया गया है। दरवाजा खुल गया। अब यहां एक बात हम करते हैं, देखिए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी के पास अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम वही लाते रहे, वही लाते थे ना, और वापस जाते थे। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को आसमानों के दरवाजे खटखटाने पड़े कि भाई दरवाजा खोल तो मुझे ऊपर जाना है, या ऊपर से आए कि दरवाजा खोल तो मुझे नीचे जाना है? एक सेकंड में ऊपर और एक सेकंड में नीचे। और बाद मरतबा तो ऐसा हुआ कि बहुत तेजी के साथ आपको आसमान से जमीन की तरफ आना पड़ा। उसकी एक तफसील है जिसका यहां वक्त नहीं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। ये आज कौन सा रास्ता है कि दरवाजे बंद हैं, दस्तक दी जाती है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बताते हैं कि मैं हूं, तुम्हारे साथ कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या उनको बुलाया गया? हाँ, उनको बुलाया गया। दरवाजे खोल दिए। तो जिब्रील जब रोजाना जाते थे, हर हर नबी के पास आते थे, तो जब तो उनको जरूरत नहीं पड़ी, पता ये चला कि वो शाहराए जिब्रील थी, ये शाहराए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और खालिक कायनात ये बताना चाहता था कि पता चल जाए कि मेरे महबूब को हमने बाकायदा बुलाया है आसमानों की सैर कराने के लिए, जन्नत और जहन्नम और तमाम चीजों का मुशाहिदा कराने के लिए, इसलिए ये दरवाजे बंद हैं। और फिर दरवाजे खुल गए। जब सरकार का नाम लिया तो दरवाजे खुल गए। यहां यह भी हिकमत थी कि तुम जान लो और समझ लो कि तुम पर इल्म और हिकमत के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे नबी के नाम से, फतह नुसरत के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे नबी के नाम से, कामयाबी के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। दूसरे आसमान पर पहुंचे, वही कैफियत। जब अंदर गए तो हजरत याहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सरकार ने सलाम किया, इन दोनों ने जवाब दिया। फिर तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब आसमानों से गुजर गए, अब कहां पहुंचे? सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का दरख्त है जिसके बेर मटके के बराबर हैं, यानी उनका साइज मटके के बराबर, और उसके पत्ते जो हैं वो हाथी के कानों के बराबर, इतना अजीम और शान दरख्त। वहां पर चार नहरें थीं, चार। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से जब सरकार ने पूछा, ए जिब्रील ये नहरें कैसी हैं, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें दो पोशीदा हैं और दो जाहिर हैं। जो पोशीदा हैं वो तो जन्नत की नहरें हैं, और जो जाहिर हैं वो नील और फुरात हैं। फिर बैतुल मामूर, सरकार फरमाते हैं, वो मेरे सामने पेश किया गया। इसके बाद एक बर्तन शराब और एक बर्तन दूध और एक बर्तन शहद का मुझे दिया गया, यानी मेरे सामने पेश किया गया, तो मैंने दूध को ले लिया। अब हजरत जिब्रील अलैहि सलाम ठहर गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बाल बराबर भी मैं यहां से आगे बढ़ा तो मेरे ये पर जलकर खाक हो जाए, मैं आगे नहीं जा सकता, ये मेरी इंतहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छा आप जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता। अब यहां पर एक बात काबिले गौर है, हम अहले सुन्नत व जमात का यह अकीदा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेमिसाल हैं, बेनजीर हैं, लाजवाब, ना वो हमारी तरह हैं ना हम उनकी तरह। अगर जो बाज़ लोग यकीदा रखते हैं ना, लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात यकीदा नहीं रखते, हम उन जैसे नहीं हो सकते और ना वो हमारी तरह, वो बेमिसाल हैं, बेनजीर हैं, लाजवाब हैं। यही अकीदा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का भी। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता चला कि यह अकीदा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का। देखिए, मक्के में जिब्रील साथ हैं, सफर में साथ हैं, मस्जिद हराम में साथ हैं, मस्जिद अक्सा में साथ हैं, पहले आसमान पर दूसरे पर सातों आसमानों पर साथ हैं, लेकिन जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, बस अब मेरी हद है, इस बॉर्डर को मैं क्रॉस नहीं कर सकता, यहां मेरी हद है, आप जाइए, आप जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता। इस अमल ने हमें बता दिया कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का अकीदा यही है कि ना मैं हुजूर की तरह हूं ना हुजूर मेरी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप देखिए, अगर अपने को नबी की तरह समझते तो खुद भी चले जाते कि जब ये जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता, और अगर उनको अपनी तरह समझते तो रोक लेते कि जब मैं जल सकता हूं तो ये कैसे बचेंगे, जब सिदरा वाला जल रहा है तो मक्के वाला कैसे बचेगा। ना अपने को नबी की तरह समझा, ना नबी को अपनी तरह समझा, आजजी इनके सारे का इजहार कर दिया, बस मैं यहां से आगे नहीं जा सकता। हां सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप आगे तशरीफ ले जाए। अच्छा, वहां क्या हुआ, फरिश्तों ने देखा शहनशाह कौनो मका की सवारी आ रही है, अर्ज किया इलाहुल आलमीन तेरे महबूब की सवारी आ रही है, इजाजत हो तो हम भी जियारत कर लें। अल्लाह ने फरमाया, हां जियारत कर लो। दरख्त पर सिदरतुल मुंतहा के हर पत्ते पर फरिश्ते चढ़ गए, और एक रिवायत में आया कि हर पत्ते पर एक फरिश्ता हालत कयाम में। सरकार की सवारी गुजरेगी, हम सरकार के चेहरे मुबारक की जियारत करेंगे। कुरान कहता है, इज यक्ष सिदरता मा यक्षा, पस ढांप लिया जिस चीज ने उसे ढांप लिया। किस चीज ने ढांप लिया, फरिश्तों ने ढांप लिया, कसीर तादाद में सिदरतुल मुंतहा क्यों खड़े हैं, सवारी गुजरने वाली शहनशाह कौन मका की एक झलक हुजूर अलैहिस्सलाम की देखी, दीदार के मुश्ताक। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की सवारी गुजरी और फरिश्तों की निगाह चेहरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, बेख्तियार उनकी जबान से निकला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, देखते ही रह गए। सुभान अल्लाह के माना अल्लाह पाक। गौर करो, देख तो नबी को रहे हैं और पाकी अल्लाह की बयान कर रहे हैं, चेहरा सरकार का देख रहे हैं और अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, क्यों। फरिश्तों ने सोचा होगा, जब बनने वाला ऐसा है तो बनाने वाला कैसा हो, जब सवारने वाला ऐसा है तो सवारने वाला कैसा हो, जब निखरने वाला ऐसा है तो निखारने वाला कैसा होगा, अरे जब नबी इस शान का है तो फिर खुदा किस शान का हो। इसलिए कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर अलैहिस्सलाम की सवारी गुजर गई। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, बारगाहे अस्माए इलाहिया से गुजरे। अल्लाह तबारक व ताला के जो अस्मा हैं, अस्माए सिफात, उलमा ने लिखा कि रहीम की तजल्ली से गुजरे तो रहीम हो गए, करीम की तजल्ली से गुजरे तो करीम हो गए, गफूर की तजल्ली से गुजरे तो गफूर हो गए, हलीम की तजल्ली से गुजरे तो हलीम हो गए। जितने अस्माए सिफात अल्लाह तबारक व ताला के थे, सरकार उनकी तजल्लियात से गुजरे और उन्हीं सिफात से मुत्तसिब होते चले गए और आगे बढ़े। एक सब्ज रंग का तख्त सामने आया जिसे कहते हैं रफ रफ, सब्ज रंग का तख्त जिसके साथ एक फरिश्ता था। हुजूर अलैहिस्सलाम उस पर रौनक अफरोज हुए। फिर एक मकाम आया कि वो तख्त भी रुक गया और वो फरिश्ता भी रुक गया। अब बिल्कुल तने तनहा जिब्रील सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए, रफ रफ रुक गया, फरिश्ता रुक गया, हुजूर अलैहिस्सलाम बिल्कुल तने तनहा आगे बढ़ रहे। जब आगे बढ़े तो कुछ घबराहट महसूस हुई। अब आप कहेंगे घबराहट क्यों हुई, वो तो रब के कुर्ब खास में जा रहा। अब देखिए हर हर अमल में अल्लाह ताला की हिकमत पोशीदा है। घबराहट हुई, वहशत हुई, क्यों? घबराहट होती है दिल में और दिल होता है सीने में और सीना होता है जिस्म के साथ। घबराहट होना इस बात की दलील है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सिर्फ रूए मुबारक के साथ नहीं गए, जिसमें अकदस के साथ गए। ये थी हिकमत, ताकि पता चल जाए कि मेरे महबूब को जिस्मानी मेराज हुई है, सिर्फ रूहानी मेराज नहीं हुई। अच्छा, अब जो घबराहट हुई, जाहिर है एक आदमी एक अननोन मकाम पर जाए जहां कोई भी जानने वाला ना हो, न कोई दोस्त है, न अजीज है, न रिश्तेदार है, कोई जानने वाला नहीं है, बिल्कुल तने तनहा। तो एक आवाज आई, किफ या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना रब्बक युसल्ली, बेशक आपका रब सलात पढ़ रहा है। और ये आवाज सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की आवाज के बिल्कुल मुशाबा। ठहर जाइए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब सलात पढ़ रहा है। तो क्या रब सलात पढ़ता है, नमाज पढ़ता नहीं? यहां सलात बमाना दुरूद है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठहर जाइए, आपका रब आप पर दुरूद पढ़ रहा। अच्छा, आवाज जो मुशाबा थी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की आवाज से, क्यों? इसलिए किसी और की आवाज के भी मुशाबा हो सकती थी। कितने सहाबा थे, कितने और बहुत सारे लोग थे, नहीं, आवाज मुशाबा थी सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला की आवाज से। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आवाज मुझे आई वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की आवाज से बिल्कुल मिलती जुलती मुशाबा। इसलिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून मिलता है तो अबू बकर की आवाज से, इसीलिए उनकी आवाज के मुशाबा आवाज सरकार को सुनाई गई और हुजूर अलैहिस्सलाम को फिल हकीकत सुकून हुआ। हुवा युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, वो और उसके फरिश्ते, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर दुरूद पढ़ रहे। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। देखिए ये वाकया जो है कुरान करीम की सूरह नजम में और इस सूरत सूरह बनी इसराइल में, इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर इसको जिक्र किया। कुरान कहता है सुम्म दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना, फिर वो करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि दो कमानों का फासला रह गया। अब यहां पर काब कहते हैं मकदार को और कौस के माना है कमान, कौसैन यानी दो कमानों का फासला, काबा कौसैन औ अदना, ये लफ्ज कुरान करीम के। ये क्यों इस्तेमाल किया? अरब में एक रिवाज था कि जब दो कबीले आपस में लड़ते थे और लड़ने के बाद उनमें सुलह होती थी, तो आप जानते हैं कि उस जमाने में तीर और कमान होते थे, तो वो दोनों कबीले अपनी अपनी कमाने लेकर आते थे और उनको ऐसे मिला दिया करते थे बिल्कुल, यानी दरमियान में कोई फासला नहीं, और मिलाकर फिर उसको फिजा में बुलंद करते थे। और ये बताते थे लोगों को कि लड़ने के बाद अब जो हम मिले हैं तो हम इस तरह मिले हैं कि इसका दुश्मन मेरा दुश्मन, इसका दोस्त मेरा दोस्त, इस तरह हम मिल गए हैं। वही मिसाल कुरान ने दी, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना, फिर वो करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब कि जैसे दो कमानों का फासला, इस तरह। तो इसी को आला हजरत ने लिखा, वो कहते हैं वही लामकां के मकी हुए सर अर्श तख्त नशीं हुए, वही लामकां के मकी हुए सर अर्श तख्त नशीं हुए, ये नबी हैं जिनके मकां हैं ये, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, ये नबी हैं जिनके मकान है ये, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। उस मकाम पर पहुंचे जहां कोई नबी रसूल या मुकर्रब फरिश्ता नहीं पहुंच सका। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आम कायदा है कि जब कोई दोस्त अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है तो उसके लिए कोई तोहफा लेकर आता है। ऐ महबूब हमारे लिए क्या तोहफा लाई? अब आप देखिए कि तोहफा उसे दिया जाता है और वो दिया जाता है कि जिसे दिया जाए वो चीज उसके पास ना हो, जब भी तो तोहफा कहलाएगा। अगर मेरे पास कोई चीज मौजूद है और वही चीज आप मुझे लाकर दे दें तो ये कौन सा तोहफा? कोई चीज आपके पास मौजूद है और वही चीज मैंने आपको तोहफे में दे दी तो ये तोहफा नहीं हुआ। तोहफा तो वो दिया जाए कि जिसको दिया जाए उसके पास ना हो। अब रब के पास क्या नहीं है? सब कुछ रब के पास, तो रब को क्या तोहफा दिया जाए? अब देखो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने क्या तोहफा दिया। अल्लाह ने फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई दोस्त अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है तो कोई तोहफा लेकर जाता है, महबूब हमारे लिए आप क्या तोहफा लाए? सरकार ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मेरी जितनी भी इबादत हैं मौला ये सब तेरे लिए, अपनी इबादत को पेश कर दे। अल्लाह ने फरमाया सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलामती हो। सरकार ने फरमाया मुझे अकेले पर, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सिर्फ मुझे अकेले पर नहीं जितने भी नेक बंदे मौला सब पर सलामती हो, सब पर रहमत। अब रब की बारगाह से तोहफा मिला, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाजें हमने आपकी उम्मत पर फर्ज कर दी, ये तोहफा है। कहते हैं ना नमाज तोहफा मेराज है, इसीलिए कहा सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है कि मेराज वाले आका को मेराज में मिली, अगर कोई सही तरह पढ़े तो वाकई मोमिन की मेराज है। सरकार ने फरमाया ठीक, 50 नमाजों का तोहफा लेकर वापस आए तो हजरत मूसा अलैहि सलाम खड़े, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह से क्या तोहफा मिला? फरमाया 50 नमाजें नहीं पढ़ेंगे सरकार, ये नहीं पढ़ेंगे आपकी उम्मत, फिर आप तो वापस जाइए कम कराइए। हुजूर अलैहि सलातो सलाम फिर तशरीफ ले गए, मौला ये मेरी उम्मत 50 नहीं पढ़ सकती। अल्लाह ने फरमाया ठीक है 5 कम कर देते 45, फिर वापस आए कितनी हुई? कहा 45, कहा ये भी नहीं पढ़ेंगे, फिर तशरीफ ले गए, मौला ये उम्मत नहीं पढ़ सकती, चलो 5 और कम 40। आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, मूसा अलैहि सलाम यही अर्ज करते सरकार ये नहीं पढ़ सकेंगे, आखिर में कितनी रह गई? 5। 50 फर्ज हुई नबी पाक अलैहिस्सलाम के बार बार बारगाह रब्बुल इज्जत में जाने और अर्ज करने की वजह से 50 की 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये भी नहीं पढ़ेंगे, कितनी सच्ची बात कही थी, वो जानते थे ये भी नहीं पढ़ेंगे, कहां आज लोग पढ़ते। बस नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं फिर जाऊं, क्या मेरे उम्मती ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे? नहीं नहीं अब मैं नहीं जाता। अल्लाह की रहमत से उम्मीद ये है कि जो 5 नमाजें पाबंदी से पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं वो 50 का सवाब अता करेगा, ये उसकी रहमत से उम्मीद। अब यहां एक सवाल पैदा हुआ, खड़ा कौन हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्यों नहीं खड़े हुए? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, 1,24,000 कमोबेश कितने भी खड़े हुए, सिर्फ मूसा कलीमुल्लाह। कोई और क्यों नहीं खड़ा हुआ? उलमा ने लिखा कि वजह यह थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी, मौला मैं देखना चाहता हूं, रब्बी अरिनी उन्जुर इलैक, मौला मैं देखना चाहता हूं, लन तरान, हरगिज नहीं देख सकते। अच्छा हिकमत देखिए, ये नहीं फरमाया कि कोई भी नहीं देख सकता, मूसा हमें कोई भी नहीं देख सकता, ये नहीं फरमाया। अगर इरशाद रब्बानी ये होता तो फिर तो दीदार खुदाबंदी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, तुम हरगिज नहीं देख सकते। कहने का मकसद ये था, मूसा तुम तो नहीं देख सकते लेकिन एक देखने वाला आ रहा है जो खुली आंखों से देखेगा, जो इत्मीनान से देखेगा, जो सुकून से देखेगा, जो मा जागल बसर वमा तगा का मिस्ताक बनकर देखेगा। कुरान ने कहा ना, मा जागल बसर वमा तगा, ना आंख खुली की खुली रही। अचानक कोई देखते हैं ना, एकदम आंखें फट जाती, अचानक कोई चीज देख ले, खुली की खुली रह जाती, कहते इसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई, हैरत से आंखें फट गई। तो सरकार ने जब देखा, रब का दीदार किया, तजल्लियात रब्बानी का, कुरान कहता है मा जागल बसर वमा तगा, ना आंख खुली की खुली रही, ना फटी की फटी रही, ना पलक झपकी, इत्मीनान से देखा, सुकून से देखा और बहुत तसल्ली के साथ रब का दीदार किया, उसकी तजल्लियात रब्बानी का बेहिजाबाना मुशाहिदा किया। इसलिए मूसा अलैहि सलाम खड़े हुए, उन्होंने ये सोचा होगा मेरी निगाहों में तो ये ताकत नहीं कि मैं तजल्लियात रब्बानी का बेहिजाबाना मुशाहिदा कर सकूं, कम अज कम मैं उन आंखों को देख लूं जो आंखें रब का दीदार करके आ रहे। इसलिए मूसा अलैहि सलाम खड़े। और हुआ भी यही कि जब हुजूर अलैहि सलातो वसलाम रब की बारगाह में जाते, रब का दीदार करते, तो हुजूर की मेराज होती, और जब सरकार तशरीफ लाते, मूसा हुजूर को देखते, मूसा की मेराज होती। इधर उनकी मेराज हो रही थी, इधर इनकी मेराज हो रही थी, और इन दोनों के दरमियान हम गुनाहगारों का काम हो रहा। अब यहां पर फिर एक इतराज, अब देखें ना, जिनकी नियतों में फुतूर है उन्हीं की अकलों का तो कसूर है, वो तो यही सोचते हैं कि कोई बात मिले तो फौरन शान रिसालत में माजल्ला गुस्ताखी का पहलू निकाल। उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब है कि नबी को इल्मे गैब नहीं था। तो हमने कहा इल्मे गैब इसमें कहां से आ गया, ये तो वाकई मेराज है। कहते नहीं नहीं नहीं, आप देखें ना कि आप कहते हैं कि जी 50 नमाजें फर्ज की, फिर मूसा अलैहि सलाम के पास आए, उन्होंने कहा नहीं पढ़ सकेंगे, फिर सरकार गए, फिर 5 कम हुई तो 45, फिर 40, फिर 35, 30 होते 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 5 रह गए। तो अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्मे गैब होता तो वो जानते ना कि भाई मैं जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर जाऊंगा, ये कम होंगी, तो पहले कहते थे मौला ये नहीं पढ़ सकते, सीधा सीधा 50 की 5 कर दे, हो जाता ना 5 हो जाता। लेकिन बार बार जाना, बार बार आना, ये वापिस आते, वो कहते हैं, फिर ये जाते। अरे ये तो बेइश लोग हैं, इनको क्या पता कि रब के दीदार में जो लज्जत है वो किसी चीज में नहीं। रब चाहता था मेरा महबूब मेरे पास आए, और महबूब चाहता था मैं बार बार रब की बारगाह में हाजिर हूं। मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर को देखना चाहते थे, सरकार तजल्लियात रब्बानी का मुशाहिदा करना चाहते थे, इधर इनकी मेराज हो रही, उधर उनकी मेराज हो रही, और इन दोनों के दरमियान हम गुनाहगारों का काम हो रहा। असल वजह यह थी। हमने इसका जवाब यह दिया उलमाए अहले सुन्नत ने, क्या आप ये कहते हैं ना कि जी हुजूर को इल्मे गैब नहीं था। हमने कहा अच्छा चलो मान लो, अव्वल तो मानना ही नहीं चाहिए, लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए अगर मान लो कि हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्मे गैब नहीं था, इसलिए सरकार बार बार जा रही थी, तो चलो अल्लाह को तो था ना, अगर ये नहीं जानते थे तो वो तो जानता था कि मैं 50 फर्ज करूंगा, फिर ये जाएंगे, फिर मूसा इनसे कहेंगे, फिर ये मेरे पास आएंगे, फिर 50 की 45, 40, 35 होते होते 5 रह जाएंगी। अगर इनको नहीं था तो उसको भी इल्मे गैब था, तो उसने क्यों नहीं एकदम कम कर दी कि 50 नहीं चलो भाई 5 कर दी, जाने आने की जरूरत नहीं। हिकमत ये थी। फिर कहते नहीं ये तो रब को इल्मे गैब तो था, इसमें उसकी हिकमत है। हमने कहा हिकमत है तो इसमें नबी की मसलहत, अगर रब की हिकमत है तो इसमें नबी की मसलहत है। वो बुलाना चाहता था, ये जानना चाहते थे। और एक और मसला इसमें साबित हुआ वो ये है, इन लोगों का अकीदा ये है कि जो फौत हो जाए, विसाल हो जाए, वो मदद नहीं कर सकता। ये अकीदा है ना, जबकि हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि अल्लाह का वली हो या नबी हो, कोई भी हो, और सबसे बढ़कर नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम, विसाल से पहले भी, विसाल के बाद भी, जब भी पुकारो सुनते हैं, मदद करते हैं, तसरुफात से देखते भी हैं, सुनते भी हैं, हाजत रवाई भी करते हैं। अब बताओ मूसा अलैहि सलाम जाहिरी हयात में है या विसाल फरमा गए? ये तो बात कंफर्म है ना, विसाल फरमा गए। सरकार ने फरमाया मैंने देखा अपने कब्र मुबारक में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे, विसाल फरमा गए। बाद विसाल उन्होंने मदद की या नहीं की? अगर वो ना खड़े होते तो कितनी नमाजें होती? 50। और ये मौजूद है सही रिवायत में कि उनके कहने से और सरकार दो आलम अलैहि सलातो वसलाम के बार बार बारगाह रब्बुल इज्जत में जाने आने से कितनी रह गई? 5 रह गई। तो मदद की या नहीं की? यहीं से पता चल गया कि विसाल शुदा नबी हो या वली हो मदद कर सकता है। और अगर अब भी ये कहते हैं मदद नहीं कर सकता, तो जो भी ये कहता है कि विसाल के बाद नबी मदद नहीं कर सकता, तो उनको चाहिए 50 पढ़े, फिर वो 5 क्यों पढ़ रहे? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के कायल हैं, अहले सुन्नत का यकीदा है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि नबी या वली जाहिरी हयात में हो या विसाल कर चुका हो, जो कोई पुकारे सुनता है, मदद करता है, जिस तरह हजरत मूसा अलैहि सलाम ने मदद की। हुजूर अलैहि सलातो वसलाम एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, इमामत फरमाई अंबिया किराम अलैहि सलाम की, सातों आसमानों पर, हर आसमान पर एक नबी से मुलाकात, सलाम, कलाम, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर अस्माए इलाहिया की तजल्लियात से गुजरना, फिर मका, फिर लामका, फिर काबा कौसैन, फिर रब का कुर्ब खास, और इसी में ही इसी दौरान जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा, जन्नत में जो कुछ उम्मतियों को मिलेगा, जो जो नेमतें मिलेंगी सरकार ने सबका मुशाहिदा फरमाया, और जहन्नम में जो जो सजाएं होंगी उन सब का मुशाहिदा कर लिया। और ये तमाम चीजें करके 50 नमाजों का तोहफा लेकर जब वापस तशरीफ लाए हैं, बिस्तर मुबारक उसी तरह गर्म है, दरवाजे की कुंडी उसी तरह हिल रही है। जब इंसान लेटता है ना तो उसके जिस्म की गर्मी से बिस्तर गर्म हो जाता है। आप मुशाहिदा कर लें, जब आप सोकर उठेंगे तो बिस्तर गर्म होगा, लेकिन वो कई घंटे तक गर्म नहीं रहेगा। आप उठ के चले गए, कुछ देर के बाद वो गर्मी खत्म हो गई, ठंडा हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम इतना बड़ा सफर करके वापस आ गए, बिस्तर उसी तरह गर्म है, दरवाजे की कुंडी उसी तरह हिल रही है, गोया हुजूर अलैहिस्सलाम इस जहान की जान है, जाने कौनैन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब जान जिस्म से निकल जाए तो जिस्म साकित हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम इस आलम से उस आलम में तशरीफ ले गए, इस पूरी कायनात की हर चीज जामिद और साकित हो गई। जब दोबारा तशरीफ लाए फिर दोबारा से हरकत पैदा हो, तो जो गर्मी जहां थी वो वहीं की रही, जो कुंडी हिल रही थी जहां रुकी थी वहीं रही। जब जान वापस आ गई, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम जाने कौनैन वापस तशरीफ ले आए, वो गर्मी उसी तरह बरकरार थी, वो कुंडी ने उसी तरह हिलना शुरू कर दिया। रब ने ये चाहा ही नहीं कि किसी को पता चले कि मेरा महबूब कितनी देर मेरे पास रहा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलाम का ये एक अजीम शान मोजज़ा है, और अल्लाह तबारक व ताला ने इसमें जो हिकमतें रखी वो हमारी नाकिस अक्लों में नहीं आ सकती। चंद जो उलमा ने, मुफस्सरीन ने, मुहद्दिसीन ने बयान की वो हमने आपके सामने बयान कर दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस्म अक्दस के साथ, रूह मुबारक के साथ आसमानों पर तशरीफ ले गए और वहां से वापस भी तशरीफ ले आए, लेकिन उस वक्फे को कोई काउंट नहीं कर सकता, उसका अंदाजा नहीं कर सकता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कितनी देर रहे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर वाकया बयान किया, सबसे पहले अबू जहल ने मजाक उड़ाया और इसने जा जाकर एक एक को बताया। और अल्लाह की शान देखो, अपने हबीब के वाक़े मेराज की तशहीर उन्हीं के दुश्मन से कराई। सरकार ने जिसको नहीं भी बताया था उसने जाकर बता दिया और हंस हंस कर बता रहा है, मजाक उड़ाकर, देखो वो तो कहते हैं आसमान ऊपर चले गए, वो तो कहते हैं जन्नत को देख लिया, वो तो कहते हैं फलां जगह देख लिया। उसकी शामत आई के होते होते सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उनके पास पहुंचे और बड़े हंसकर तमस्कुर के साथ कहते हैं अबू बकर रजी अल्लाह तआला, देखा तुमने तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा? फरमाते क्या कहा? वो कहते मैं आसमानों पर गया, वो कहते मैं मस्जिद अक्सा गया, फिर आसमानों पर, फिर जन्नत जहन्नुम ये सारी चीजें। एक बात पूछी सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला, तूने ये किससे सुना? उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो आशिक का मिजाज देखो, इश्क कुछ और नहीं चाहता, सिर्फ अपने महबूब को ही चाहता। एक सवाल के आशिक रसूल ने ये सारी बातें किससे सुनी? उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर उनकी जबान से तूने ये सुना है तो मैं बगैर सुने तस्दीक करता हूं वाकई वो आसमानों पर गए हो, वाकई उन्होंने ये तमाम चीजें देखी होंगी, मुशाहिदा करके एक ही रात में वापस भी आ गए हो। वो तो समझ रहा था कि ये शर्मिंदा हो जाएंगे कि ऐसी बातें जो अकल में नहीं आती, लेकिन उसको नहीं पता कि आशिक की मंजिल तो इससे बहुत आगे है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुना, फरमाया अबू बकर सिद्दीक, आपको सिद्दीक का लकब मिल गया। एक होता है सादिक और एक होता है सिद्दीक। सादिक वो है जो अपने कौल में सच्चा हो और सिद्दीक वो है जो कौल और फेल दोनों में सच्चा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने तस्दीक की। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात का यही अकीदा है, यही ईमान है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मेराज पर तशरीफ ले गए और जो जो भी सही रिवायत में बयान हुआ है उस पर हमारा ईमान है, यकीन है। ये रिवायतें बुखारी में भी हैं, मुस्लिम में भी हैं। जलीलुल कदर सहाबा ने मुख्तलिफ रिवायतें बयान की हैं। हमने बहुत सी चीज़ें इसमें छोड़ दी, बहुत सी सजाएं और जन्नत की चीज़ें, जो बहुत सारी नेमतें जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई, अगर उन तमाम को जमा कर लिया जाए तो पूरा वाकया मेराज हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस वाकये पर ईमान और यकीन कामिल रखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।